कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण अध्याय 14 शीर्षक है प्रकृति के तीन गुण। तो इस अध्याय में भगवान अर्जुन को वो वर्णन करते हैं कि तीन गुणों के संपर्क के कारण जीवात्मा इस भौतिक जगत में बंध गया है। वो तीन गुण क्या है, वो कैसे कार्य करती है, कैसे जीवात्मा को बांधती है और उसे कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये सब चीज़ इस अध्याय में वर्णन कर रहे भगवान। तो श्रील प्रभुपाद इस अध्याय के बारे में वर्णन करते हैं। सातवें अध्याय से लेकर बारहवें अध्याय तक श्री कृष्ण परम सत्य भगवान के विषय में विस्तार से बताते हैं। अब भगवान ऐश्वर्य स्वयं अर्जुन को और आगे ज्ञान दे रहे हैं। यदि कोई इस अध्याय को दार्शनिक चिंतन द्वारा भली भांति समझ ले तो उसे भक्ति का ज्ञान हो जाएगा। फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन, मानसिक चिंतन से नहीं, दार्शनिक चिंतन से उनमें थोड़ा अंतर है, लेकिन कभी कभी वो दोनों ये चीज अर्थ भी देते हैं। तेरहवें अध्याय में यह स्पष्ट बताया जा चुका है कि विनय पूर्वक ज्ञान का विकास करते हुए भवबंधन से छूट जा सकता है। यहाँ भी बताया जा चुका है कि प्रकृति के गुणों के संगति के फलस्वरूप ही जीव इस भौतिक जगत में बंध जाता है। पुरुष प्रकृतिस्तो ही भूमते प्रकृति जान नान कारणम गुण संघोष्य सद सद्यो जन्मशु। अब इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं, किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं, किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। तो ऐसे प्रॉपर लिखते हैं। तो इस अध्याय के पहले विभाग एक प्रकृति के तीन गुण के ज्ञान का गुणगान। प्रकृति के तीन गुण का उनके ज्ञान का गुणगान। आप स्पेलिंग मिस्टेक को आप ठीक कर लीजिए ना, ठीक है। प्रकृति के तीन गुणों के ज्ञान का गुणगान, और दूसरा विभाग तीसरे श्लोक से पंचम श्लोक तक, तीसरे श्लोक से पंचम श्लोक तक तीन गुण क्या है, और श्लोक क्रम विभाग तीन छः से लेकर नौ तक बॉन्डेज डिप टू थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर कंप्यूटर तीन गुणों के कारण बद्धता तीन गुणों के कारण बद्धता और उसके बाद तीन गुणों में स्पर्धा विभाग चार दस से तेरह तक दस से तेरह तक तीन गुण में स्पर्धा और उनके लक्षण तीन गुण में स्पर्धा और उनके लक्षण विभाग पांच चौदह से पंद्रह तीन गुण में व्यक्तियों के मृत्यु के बाद गंतव्य व्यक्तियों के मृत्यु के बाद गंतव्य तीन गुण में व्यक्तियों के मृत्यु के बाद गंतव्य तीन गुण में व्यक्तियों के मृत्यु के बाद गंतव्य विभाग छह सोलह से लेकर अठारह तक तीन गुण में कार्य के फल तीन गुणों में कार्य के फल सोलह से अठारह तक विभाग छह Results of the actions in the three modes of material nature. Section 7, 19 से लेकर 27 तक तीन गुणातीत व्यक्ति के लक्षण तीन गुणातीत व्यक्ति के लक्षण तीन गुणातीत व्यक्ति के लक्षण तीन गुणों को उसके आगे ही लिखना है, पार करने की विधि, तीन गुणों को पार करने की विधि। और उनको पार करने का फल, तीन गुणों को पार करने की विधि और उनको पार करने का फल। ठीक है, श्लोक क्रमांक एक। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रदक्षिणामि ज्ञानानां ज्ञानोत्तमं यज्ञार्पणाय सर्वे करं सिद्धिं विदुरः। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा। जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। परम पुनः परम भूय प्रवक्षामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी तक जितना भी ज्ञान दिया हूँ उससे भी श्रेष्ठ ज्ञान अभी मैं आपको प्रदान करूँगा। यज्ञात्वा मुनय सर्वे परम सिद्धिम इतो गतः। इसको जानकर बहुत सारे ऋषियों ने मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त की है, ऐसे भगवान बोलते हैं। इस अध्याय में जिस ज्ञान का प्रकाश किया गया है उसे अन्य पूर्ववर्ती अध्याय में दिए गए ज्ञान से श्रेष्ठ बताया गया है। इस ज्ञान को प्राप्त करके अनेक मुनियों ने सिद्धि प्राप्त की और वे वैकुंठ के भागी हुए। अब भगवान उसी ज्ञान को और अच्छे ढंग से बताने जा रहे हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कई अधिक श्रेष्ठ है और इसे जान लेने पर अनेक लोगों ने को सिद्धि प्राप्त हुई है। अतः यह आशा की जाती है कि जो भी इस अध्याय को समझेगा उसे सिद्धि प्राप्त होगी। तो हम लोगों को भी आशा करना चाहिए इसे। आप लोग सिद्धि के पथ पर है। ठीक है, जैसे हमने कहा पहले दो श्लोकों में इस ज्ञान को प्रकृति के तीन गुणों के ज्ञान को गुणगान किया गया है। इदं ज्ञानम् उपाशित्य मम साधार्म्य मागतः सर्गोऽपि नोपजायन्ते कलयो नाव्यतन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। तो और इस ज्ञान का गुणगान कर रहे भगवान कि ज्ञानम उपाश्रित्य आश्रय बनाकर या उसको प्राप्त करके उसको आश्रय बनाकर मम साधर्म में आगतः मेरे स्वभाव को प्राप्त किए और जन्म मृत्यु से परे हो गए, ऐसे बोलते हैं। सर्ग यहाँ पर सर्गोपि नोपजायन्ते, सृष्टि के समय पर वो उनका जन्म नहीं होता है। इसका अर्थ है फिर से वो इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आते हैं। जब अगला सृष्टि होगा उस समय फिर से वो जन्म नहीं लेंगे। वो महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करके फिर से वापस नहीं आएंगे या ब्रह्मा जी के अगले दिन में नहीं आएंगे। सो प्रलय न व्यवहतंति थे, और प्रलय के समय वो विचलित नहीं होंगे। ऐसे कहते हैं श्रील प्रभुपाद साधर्म्यम आगतः, उस शब्द के ऊपर टीका करते हैं कि भगवान के समान प्रकृति को प्राप्त करना। इसका अर्थ यह नहीं है कि लेकिन जीवात्मा के रूप में उसका वह स्वरूप समाप्त नहीं होता। इसका अर्थ नहीं होता है कि उसका स्वरूप समाप्त नहीं होगा, भगवान में एकाकार नहीं होगा, उनके जैसे स्वभाव को प्राप्त करेगा। तो वैदिक ग्रंथों से ज्ञात होता है कि जो मुक्तात्माएं वैकुंठ जगत में पहुंच चुकी है वे निरंतर परमेश्वर के चरण कमल का दर्शन करती हुई उनके दिव्य प्रेमा भक्ति में लगी रहती है। किसी को पता है परमेश्वर के चरण कमलों के दर्शन? ओम तद् विष्णु परमं पदं पश्यन्ति सूरयः, वो श्लोक है ठीक है, ऋग्वेद से है ना, एक्चुअली वो पुरुष सूक्त से है, वो पुरुष सूक्त। ये पुरुष सूक्त में उच्चारण किया जाता है वो मंत्र। सामान्यतः इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के तीन गुणों द्वारा दूषित रहता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता है वह दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वो परम पुरुष के समकक्ष पद पर पहुंचता है। जिन लोगों ने चिन्मय आकाश का ज्ञान नहीं है वे मानते हैं कि भौतिक स्वरूप के कार्यकलापों से मुक्त होने पर वह आध्यात्मिक पहचान बिना किसी विविधता के निराकार हो जाती है। लेकिन जिस प्रकार इस संसार में विविधता है उसी प्रकार आध्यात्मिक जगत में भी है। जो लोग इससे परिचित नहीं है वे सोचते हैं कि आध्यात्मिक जगत इस भौतिक जगत के विविधता से उल्टा है। तो ये उल्टा नहीं है, भौतिक जगत के उल्टा नहीं है, वास्तव में आध्यात्मिक जगत के उल्टा ये भौतिक जगत। लेकिन वास्तव में होता है यह है कि आध्यात्मिक जगत चिन्मय आकाश में मनुष्य को आध्यात्मिक रूप प्राप्त हो जाता है। वहाँ के सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक होते हैं और यह आध्यात्मिक स्थिति भक्ति में जीवन कहलाती है। यह वातावरण अदूषित होता है और यहाँ पर व्यक्ति गुणों की दृष्टि से परमेश्वर की समकक्ष होता है। ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त आध्यात्मिक गुणों उत्पन्न करने होते हैं। जो इस प्रकार आध्यात्मिक गुण उत्पन्न कर लेते हैं वह भौतिक जगत के सृजन या उसके विनाश से प्रभावित नहीं होते। तो अभी पहले तीन श्लोकों में, मतलब तीसरा, चौथा और पांचवें श्लोक में भगवान इन तीन गुणों के बारे में, क्या है ये तीन गुण, उनका वर्णन करते हैं। मम योनिर्महद्ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतपुत्र, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म का गर्भस्थ करता हूँ जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। तो यहाँ पर हमारे माता पिता कौन है उसके बारे में वर्णन हो रहा है इस श्लोक में। जो महत ब्रह्म, मतलब जो महत तत्व, वो महत ब्रह्म या महत तत्व क्या है उसके बारे में पहले वर्णन करते हैं। इस संसार में संसार की व्याख्या है, यह संसार की व्याख्या है। जो कुछ घटता
घटित होता है वह क्षेत्र तथा क्षेत्रज्ञ के संयोग से होता है। प्रकृति और जीव का संयोग स्वयं भगवान द्वारा संभव बनाया जाता है। तो महातत्व क्या है? वो समग्र ब्रह्मांड का संपूर्ण कारण है और भौतिक कारण की सामग्री समग्र वस्तु है, या दूसरे शब्दों में यह 24 तत्वों का संपूर्ण जो 24 तत्व है वो संपूर्ण मात्रा में, उसको ही महातत्व कहते हैं। जिसमें प्रकृति के तीन गुण रहते हैं, कभी कभी ब्रह्म कहलाते हैं। इस महातत्व को भी ब्रह्म कहलाता है। कहां पर आया था इसके पहले महातत्व को ब्रह्म कहा गया था? तेरहवें अध्याय में सातवें श्लोक और पांचवें अध्याय के दसवें श्लोक, ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा भरोतिया लिप्यते सन पापेन पद्मपत्रामिव। ब्रह्मण्यादाय वहां पर उसको प्रदान बताया गया। सर्व हे एतद् ब्रह्म तस्माद् एतद् ब्रह्म नाम, वो पहले मांडुक्य उपनिषद से, और उसके बाद तस्मादेतद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते मुंडक उपनिषद, फिर त्रौपदी भगवद्गीता के श्लोकों को उल्लेख करते हैं। मम योनिर् महत् ब्रह्म, तो ऐसे श्री प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि अलग अलग जगह पर इस महत्त्व को भी ब्रह्म कहा गया। तो तस्माद् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते, तो मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, और यहाँ पर भगवद्गीता में इसको महत् ब्रह्म कहा गया। पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि 24 तत्व भौतिक शक्ति और वे महत् ब्रह्म अर्थात भौतिक प्रकृति के अवयव है,
इंग्रेडिएंट्स, अवयव। समझ में आ गया महातत्व का अर्थ क्या होता है? महातत्व मतलब ये 24 तत्वों का पूरा मिलकर उसको महातत्व कहते हैं।
और उसके बाद श्रील प्रभुपाद यहाँ पर
एक उदाहरण दे रहे हैं। जो सांख्य दार्शनिक होते हैं, हम लोग चर्चा किया था ना सांख्य दार्शनिक, छह दर्शनों में वो एक दर्शन, वो लोग कहते हैं कि ये 24 तत्वों के संयोजन से ही जीव का उत्पत्ति होता है, ऐसे कहते हैं। उसके लिए क्या उदाहरण देते हैं? वो कोई आत्मा परमात्मा कोई नामक कुछ चीज़ नहीं है, सिर्फ ये 24 तत्वों के संयोजन से, जैसे आधुनिक वैज्ञानिक करते हैं रासायनिक वस्तुओं के संयोजन से क्या होता है, जीव उत्पन्न हो जाता है, वैसे वो लोग भी है ऐसे कहते हैं। हाँ, यहाँ पर वो लोग क्या उदाहरण देते हैं? बिच्छू, जैसे बिच्छू चावल के दानों में जन्म लेता है, वैसे सभी जीवों का महातत्व से उत्पन्न होता है, ऐसे कहते हैं। लेकिन चावल से अपने आप उत्पन्न नहीं होगा है बिच्छू, वो वहाँ पर जब पहले बिच्छू अंडे डाल के रखा रहता है उसके कारण चावल से वो निकलते हैं छोटे छोटे बिच्छू। सो इसलिए सिर्फ भौतिक तत्वों का संयोजन से नहीं होता है, लेकिन जब तक भगवान अंडे दे देते हैं या भगवान क्या देते हैं, बीज प्रदान करते हैं, तब जीवों का सृष्टि होता है। बिच्छू अपने अंडे दान के ढेर में देती है, और कभी कभी यह कहा जाता है कि बिच्छू दान से उत्पन्न हुई, लेकिन दान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं है। वास्तव में अंडे माता बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म के कारण नहीं होती, बीज भगवान द्वारा प्रदत्त होता है।
और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं। इस तरह प्रत्येक जीव को उसके पूर्व कर्मों के अनुसार भिन्न बने शरीर प्राप्त होता है, जो इस भौतिक प्रकृति द्वारा रचित होते हैं, जिसके कारण जीव अपने पूर्व कर्मों के अनुसार सुख या दुख भोगता है। इस भौतिक जगत के जीवों की समस्त अभिव्यक्तियों के कारण उत्पन्न है।
जैसे पहले कहा गया, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोजन से इस सृष्टि का अस्तित्व, मतलब जीवों का अस्तित्व में, जीव अस्तित्व में आ जाते। सिर्फ क्षेत्र या 24 तत्वों से आते नहीं है तो वो गलत है। हाँ, बेसिकली यहाँ पर क्या हम लोग समझे कि भगवान महातत्व क्या है, वो माँ के समान है, और भगवान पिता के समान।
सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदपितः। हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार के जीव योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदान पिता हूँ।
तो भगवान सबके पिता है, पिता है। परम सत्य का एक लक्षण होना चाहिए, वो सबका पिता है। भगवान कृष्ण इसीलिए परम सत्य है क्योंकि वो सबके पिता है। सिर्फ हिंदुओं का पिता नहीं है वो, ईसाइयों का पिता है, और क्या है, मुसलमानों का पिता है, सबके पिता है वो। भारत के पिता नहीं है वो सब, या कभी कभी जगन्नाथ, जगन्नाथ मतलब ओडिया नाथ नहीं है, पूरा जगत के नाथ है वो। तो ऐसे सबके पिता है वो। जब इसलिए कृष्ण भावनामृत क्या है, वो सबके लिए जरूरी है और वो स्वाभाविक भी है। कृष्ण भावनामृत स्वाभाविक है, वो कैसे सिद्ध करेंगे, नेचुरल। जब श्रील प्रभुपाद पाश्चात्य देश में गए थे तब किसी को कृष्ण के बारे में पता नहीं था, जब उन्होंने कृष्ण के बारे में बता दिए तुरंत ही सब लोग कृष्ण भक्त बन गए। इसका क्या अर्थ है, कुछ ही सालों में बहुत भक्त बन गए। तो ये उनके हृदय में भी कृष्ण भक्ति है, कृष्ण भावनामृत स्वाभाविक है, क्योंकि भगवान उनके भी पिता है कृष्ण। तो ये हमें समझना चाहिए।
और सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति तासां ब्रह्म महद्योनिर।
तो जो भी इस भौतिक जगत में जीव है उनके सभी के पिता भगवान, सिर्फ मनुष्यों के नहीं, अन्य योनि में भी जो भी जीव है उनके भी पिता भगवान है। तो ऐसे यहाँ पर 84 लाख योनियाँ हैं। इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये 84 लाख योनियाँ पूरा ब्रह्मांड पर फैले हुए हैं। सिर्फ ये पृथ्वी के नहीं है, ये 84 लाख योनियाँ पूरा ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। और इसलिए यहाँ पर निष्कर्ष आ जाता है कि दूसरे लोकों में भी जीव है, या दूसरे शब्दों में सभी लोग जीवों को अकोमोडेट करने के लिए, उनको वहाँ पर अकोमोडेट मतलब उनको वहाँ पर स्थित करने के लिए क्या सृष्टि किया गया है ना। जीव के इच्छा के अनुसार सृष्टि होता है ना, इसका अर्थ है जीव को इच्छा, भौतिक इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए ये भौतिक सृष्टि है। तो इसलिए उनके अलग अलग इच्छाएं हैं और उनको इच्छा पूर्ति करने के लिए अलग अलग लोगों को बनाया गया है। ऐसा नहीं कि कुछ लोग सिर्फ खाली है, भगवान को कुछ समझ में नहीं आया, पृथ्वी के ऊपर किसी न किसी रूप से वो किसी न किसी रूप से ये जीवों को डाल दिया सिर्फ ये पृथ्वी के ऊपर। इसके लिए कुछ कारण होना चाहिए ना, क्यों ये पृथ्वी के ऊपर ही जीव डाल दिया वो भगवान, है ना, इसके लिए कुछ कारण होना चाहिए ना। लेकिन सब जगह जीव है उसके लिए कारण है, क्योंकि जीवों का अलग अलग इच्छाएं हैं। ऑल दिस प्लैनेटरी सिस्टम्स आर क्रिएटेड टू अकोमोडेट द डिफरेंट लिविंग एंटिटीज टू सेटिस्फाई देयर, फुलफिल देयर मटेरियल डिजायर्स। तो ऐसे अलग अलग जीव अलग अलग जगह पर वो निवास करते हैं। तो यहाँ पर समझने का क्या अर्थ होता है, हमने पिछले श्लोक में बताया महतत्व माता है और भगवान कृष्ण पिता है। माता का क्या क्या कार्य होता है, गर्भ में बच्चों को वो स्थान देती है, और दूसरा चीज है वो बच्चे के जन्म के लिए या उसके शरीर को विकास के लिए अलग अलग अवयव देती है, इंग्रेडिएंट्स। तो अभी स्थान के बारे में यह चौथे श्लोक में बताया गया कि इसलिए प्रॉपर यहाँ पर सभी
आध्यात्मिक तो सब जगह पाए जाते हैं ऐसे बोलते हैं।
सर्वोच्च लोक में भी जहाँ ब्रह्म असीम पाए जाते हैं, और इसके पहले हम लोग दूसरे लोकों में जीव है उसके लिए क्या तर्क है, कैसे हम उसको सिद्ध कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं, है ना। दूसरे अध्याय में चर्चा कर रहे थे ना, सर्वगत जीव क्या है, सभी जगह विद्यमान है, तो हम लोग उसको चर्चा कर चुके हैं। तो पृथ्वी जल अग्नि के भीतर भी जीव है, ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति तथा बीज प्रदा कृष्ण द्वारा प्रकट होते हैं। तात्पर्य यह है कि भौतिक जगत जीवों को गर्भ में धारण किए है ना, गर्भ में धारण किया, स्थान दिया है, जो सृष्टि काल में अपने पूर्व कर्मों के अनुसार विविध रूपों में प्रकट होते हैं। श्लोक क्रमांक 5, सत्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभव निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहे नमभ्यं। प्रकृति भौतिक प्रकृति तीन गुणों से युक्त है, ये है सतो रजो तथा तमोगुण। ये महाबाहो अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों से बंध जाता है। तो हमने कहा माता स्थान देते हैं और अवयव देते हैं, वो अवयव क्या है, ये तीन गुण है, वो अवयव को इन तीन इस श्लोक में वर्णन किया जा रहा है। तो तीन गुण कैसे अवयव है, 24 तत्व तो होना चाहिए ना, लेकिन तीन गुण से ही 24 तत्व प्रकट हो जाते हैं, हम लोग उसको चर्चा कर चुके थे। तो ऐसे तीन गुणों से ही 24 तत्व प्रकट हो जाते हैं, इसको विस्तार में तृतीय स्कंद भागवत में वर्णन हुआ है। तो ये तीनों गुण क्या है, सत्व रज तम, ये प्रकृति के गुण हैं, प्रकृति के शक्तियां हैं। तो ये प्रकृति ऐसे तीन गुणों में विभाजित है। इसको शिला प्रभुपाद पहले एक रस्सी से तुलना करते हैं, गुण का अर्थ होता है एक रस्सी। तो रस्सी क्या है, वो कम अन्य तीन छोटे रस्सियों से बनाया जाता है उसको, और वो रस्सी बहुत ही ऐसे तीन रस्सियों को मिला के एक रस्सी बना देंगे तो बहुत प्रबल हो जाता है। तो वो रस्सी किसके लिए यूज़ करते हैं, किसी को बांधने के लिए यूज़ करते हैं, है ना। तो हम सभी जीवों को ये रस्सी के द्वारा, प्रकृति गुणों के उनके रस्सी के द्वारा बांध देती है। और प्रभुपाद एक और उदाहरण दे जो रंगों का, तो तीन प्रमुख रंग होते हैं, किसी को बताए कौन कौन से, नीला पीला और लाल, लाल पीला और नीला, ऐसे तीन प्रकार के रंग होते हैं। तो इन रंगों के मिश्रण से जो चित्र बनाते हैं वो लोगों को पता रहता है क्या क्या रंग का मिश्रण करने से क्या क्या हो जाता है। तो इन रंगों के मिश्रण के द्वारा क्या हो जाता है, पूरा अलग अलग प्रकार के जो रंग है बन जाते हैं, कई प्रकार के रंग बन जाते हैं। तो दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में जो भी विविधता है वो इस इन तीन गुणों के मिश्रण के द्वारा आता है। तो अलग अलग प्रकार के भर्ता होते हैं, अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं, अलग अलग प्रकार के रंग होते हैं, अलग अलग प्रकार के जड़ी बूटियां हैं, अलग अलग प्रकार के पेड़ है, वृक्ष है, पक्षी है, अलग अलग प्रकार के लोक है, सब क्या है, इन तीनों गुणों के मिश्रण के द्वारा होता है। तो भौतिक जगत में विविधता, क्योंकि जीवों का विविध अलग अलग प्रकार के इच्छाएँ हैं, उसको पूर्ति करने के लिए विविधता चाहिए, वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट कहते हैं ना, तो विविधता नहीं है तो कैसे आनंद आएगा। तो इसके कारण जीव, यहाँ पर आपने देखा होगा जीव क्या करता रहता है, अलग अलग चीज़ों का आस्वादन करने के लिए कोशिश करता है। एक आज ये किया ठीक है, हम कुछ और किसी में किसी और चीज़ में स्वाद लेंगे कल। ऐसे विविधता में वो विविधता से भोग प्राप्त करने के लिए या भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। तो यही तीन गुण इसको प्रदान करते हैं, बनाते हैं। और ये तीनों गुण क्या है, ऑल परवेडिंग, सब सब जगह विद्यमान है, पूरा भौतिक जगत में सब जगह फैले हुए हैं। ऐसा एक भी चीज नहीं है इस भौतिक जगत में जो इन गुणों के प्रभाव में नहीं। तो सब कुछ, समय, हम लोग जो अन्न खाते हैं, हम लोग कपड़ा पहनते हैं, हमारा सोच विचार, हमारे रहने का ढंग, या हमारे कपड़े, या हम जो चीज़ों को वस्तुओं को उपयोग करते हैं, जहाँ पर हम लोग रहते हैं, ये सब चीज़, काल भी, समय भी, सुबह का समय, दोपहर का समय, सब कुछ क्या है, ये गुणों के प्रभाव में है। उसके लिए कैसे उदाहरण, जैसे ये कपड़े में ये जो धागे ऐसे है ना, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली है ना बुने गए हैं, ये सब जगह विद्यमान है, ये है ना धागे ये कपड़े में पूरे जगह सब जगह विद्यमान है। वैसे ही ये तीनों गुण पूरे सब जगह विद्यमान है, सब कुछ इनके प्रभाव में है। तो ये तीन गुण है, प्रकृति तीन गुणों से युक्त है या बना है। सो जब प्रकृति के संसर्ग में जीव आता है तो इन गुणों से बंध जाता है। दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है, फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वो प्रकृति के तीन गुणों के जादू से वशीभूत होकर कार्य करता है। क्योंकि जीव को प्रकृति के विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। यही उनके प्रकार के सुख दुख का कारण है। तो अभी छठे श्लोक से नवें श्लोक तक भगवान कैसे जीव इन तीन गुणों से बद्ध है उसका वर्णन करते हैं। और शिल प्रभुपाद उनके तात्पर्यों में ये तीन गुणों का अलग अलग परिभाषा देते हैं। सत्वगुण क्या है उसका परिभाषा क्या है, रजोगुण क्या है उसका परिभाषा क्या है, तमोगुण क्या है उसकी परिभाषा क्या है, इसको वर्णन करते हैं। और कैसे बद्ध हो जाता है जीवात्मा उसको भी वर्णन करता है। तो छठे श्लोक में सत्वगुण, सातवें श्लोक में रजोगुण, आठवें श्लोक में तमोगुण और नवें श्लोक में सार या निष्कर्ष। तत्र एक और चीज यहाँ पर इसको आरंभ करने से पहले, ये जो पूरा अध्याय है वो एक टेबल में हम लोग बना सकते हैं। यू कैन स्टार्ट डूइंग इट, जस्ट मेक फोर कॉलम्स। फोर कॉलम्स यू कैन मेक अ लाइन टेबल, यू कैन मेक और यहाँ पर no.
तीन गुणों के कारण बदलता, मतलब कैसे कंडीशनिंग ड्यू टू तीन गुण के लक्षण अभी हम लोग सतोगुण किससे बनता है जीव को, रजोगुण किससे बनता है और तमोगुण किससे बनता है और उनके क्या क्या लक्षण है, ऐसे पूरा अध्याय को उसके बाद क्या क्या उनके गंतव्य होता है हम वो विभाग बनाए ना उसके आधार पर हम लोग ऐसे लिख के पूरा टेबल, पूरा अध्याय को एक टेबल में हम लोग दिखा सकते हैं। उसके बाद में भी इसको और विस्तार कर सकते हैं क्योंकि 17वें अध्याय में क्या आता है तीन गुण में अन्न, 8वें अध्याय में भी आता है ब्राह्मण किस में आते हैं, रजोगुण में कौन आते हैं, तमोगुण में कौन आते हैं, दृढ़ता कैसे होता है, ऐसे पूरा 14वें अध्याय, 17वें अध्याय और 18वें अध्याय पूरा एक टेबल में ही फिट कर सकते हैं। तो आप ये कीजिए पढ़ के, सिर्फ अनुवाद पढ़ के पढ़ेंगे तो भी समझ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पर अन्न लिखना, तो सतोगुण में अन्न कैसे होता है, रजोगुण में अन्न कैसे होता है, तमोगुण में अन्न कैसे होता है, और मोड ऑफ वर्शिप किन किन को पूजा करते हैं, सतोगुण वाले किन को पूजा करते हैं, रजोगुण वाले किन को पूजा करते हैं और तमोगुण वाले किन को पूजा करते हैं। सतोगुण में देवी देव, वो 17वें अध्याय में आता है, देवी देवताओं को पूजा करते हैं, रजोगुण में जो एक शक्तिशाली व्यक्ति का पूजा करते हैं और तमोगुण में वो भूत प्रेतों का या यक्ष राक्षसों का पूजा करते हैं, है ना। तो ये सब ऐसे बताते हैं। और क्या, तो ये सब सैंपल बना दिया आपने और लिख लीजिए, यस ऐसे बनाना चाहिए, करेंगे ना, आसान है ऐसा करेंगे, ठीक है। सो 14, 17 और 18 तीनों अध्याय को उसको कर सकते हैं, और 18 अध्याय पूरा नहीं लेकिन कुछ श्लोक जहाँ पर ऐसे तीन गुणों में अलग अलग चीज़ों का वर्णन आता है, शायद 15वें श्लोक से 40, 42 या 44 श्लोक तक कर सकते हो। नो इट नॉट आई एम जस्ट शोइंग द सैंपल, डोंट टेक टाइम फॉर दिस, मेरे पास बनाया हुआ है शायद बहुत सारे लोगों के पास होगा ना, यू हैव अदर सेंस, ठीक है। तो श्लोक क्रमांक 6, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं मनामयं सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानगा। हे निष्पाप, सतोगुण
अन्य गुणों की उपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्य को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित है वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तो कैसे बंध जाते हैं? सतोगुण के कारण इसका यहाँ पर वर्णन हुआ है। तो श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं, देखे भगवद्गीता के इस अध्याय में ये गलत है, क्योंकि प्रभुपाद जी how they are differently conditioned in is explained in this section of Bhagavad Gita. Section मतलब विभाग, कैसे वो लोग बद्ध है ऐसे इस विभाग में वर्णन हुआ है। मतलब इस विभाग मतलब 6 से लेकर 9 श्लोक तक जो हम लोगों ने चर्चा किया। सो तो बद्ध जीव अलग अलग प्रकार के इन प्रकृति के द्वारा बद्ध हो गए हैं। कोई सुखी रहते हैं, कोई बहुत क्रियाशील रहते हैं, कोई बहुत निस्सहाय भाव में रहते हैं। तो ये सभी प्रकार के मानसिक चेतनाएं क्या है, ये 3 गुणों से होते हैं। तो वो कैसे है? तो पहले यहाँ पर बोल रहे सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन निर्मलत्वात्। निर्मलत्वात् मतलब इस भौतिक जगत में सत्वगुण को बहुत शुद्ध माना गया है, और प्रकाशकम, प्रकाशकम मतलब प्रकाश देने वाला या ज्ञान प्रदान करने वाला है, और अनामयम विदाउट एनी सिंपल रिएक्शंस। अनामयम शब्द का एक और भी अर्थ होता है कि कोई रोग नहीं रहता, रोग से मुक्त रहता है। तो अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन छानगा, इस जो गुण में रहते हैं वो ज्ञान और सुख से बंध जाते हैं। तो उनको कोई भौतिक सुख नहीं प्राप्त होता है, मतलब भौतिक दुख का अनुभव नहीं होता है, वो सुखी महसूस करते हैं। जैसे आश्रम का जीवन क्या है, वो सुखी जीवन है ना। तो बाहर लोग इधर उधर भाग रहे हैं, हम लोग शांति से यहाँ पे बैठ के तो हालांकि हम लोग कहते हैं मंदिर क्या है दिव्य है, लेकिन सामान्यतः हम सब लोग सतोगुण में कार्य करते थे, इसलिए बाहर के दुनिया के जो दुख का अनुभव जो नहीं होता है यहाँ पर। तो लेकिन इससे बंद नहीं जाना चाहिए हम लोग तो अच्छा बड़ा मंदिर बांध देंगे तो आराम से रह सकते हैं ना तो ऐसे कहा जाए, जनरली सामान्यतः आश्रम का जीवन ऐसे होता है। पहले जमाने में लोग शांति से जंगल में रहा करते थे, कुछ दुनिया के संसार के क्या है जो तकलीफ है और दुख है उनका अनुभव नहीं होता था। तो उसको क्या बोलते हैं, सुख बोलते हैं, वो सतोगुण का कारण होता है, और उनको ज्ञान भी रहता है, और उस ज्ञान के कारण वो लोग ऐसे सुविधाजनक बना देते हैं जीवन को। तो उसके कारण इसका उदाहरण बोल रहे ब्राह्मण करके, या यहाँ पर नीचे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वैज्ञानिक लोग या ऐसे दार्शनिक लोग ये सब इसमें आते हैं, लेकिन वो बदनाती, बदनाती शब्द का क्या अर्थ होता है, इससे आकर्षित होकर ज्ञान और है ना, कुछ कुछ लोग उनको कितना आकर्षण रहता है कि दिन रात वो क्या है लेबोरेटरी में ही काम करते रहते हैं, कुछ संशोधन करते रहते हैं ऐसे ऐसे कुछ। आशा करते हैं कि वैज्ञानिक लोग है करके उसे।
तो एक आधुनिक उदाहरण पापा दे रहे हैं,
तो बार 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 ऐसे उस ज्ञान और जो सुख है उससे आकर्षित होकर इस भौतिक जगत में एक दार्शनिक के रूप में या एक दार्शनिक के रूप में या एक वैज्ञानिक रूप में वह बारंबार दार्शनिक वैज्ञानिक या कवि बनते रहते और बारंबार जन्म मृत्यु के उन्हीं दोषों में बनते रहते हैं, लेकिन माया मोह के कारण वे सोचते हैं कि इस प्रकार का जीवन आनंदप्रद है, ऐसे कहते हैं। तो श्लोक क्रमांक 7, रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगसमुद्भवं भाति धन्निबध्नाति कौन्तेया कर्मसंगेन देहिना। हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में से बंध जाता है। रजो रागात्मकम आकांक्षा या काम से उत्पन्न होता है। विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम और लोभ के संगति से उत्पन्न होता है। असीम आकांक्षाएं तथा तृष्णाओं से होती है। तृष्णा आप जानते हैं ना, हैंकरिंग, तो संसार के चीजों के पीछे पड़े रहना, भागे भागे उसके पीछे भागते रहना, तो और बहुत सारे आकांक्षाएं रहते हैं, तो ये रजोगुण है। तो कर्म संगेन देहिना, कर्म इस आकांक्षाओं को और जो तृष्णाओं को पूर्ण करने के लिए वो व्यक्ति बहुत ही मेहनत करता है, ये रजोगुण का लक्षण है और वो मेहनत के कारण वो बंध जाता है। प्रभुपाद इसका परिभाषा देते हैं, देखिए उसमें रजोगुण की विशेषता है पुरुष तथा स्त्री के परस्पर आकर्षण है। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होते हैं, यह रजोगुण कहलाता है। ये परिभाषा है, रजोगुण का परिभाषा, ये रजोगुण कहलाता है, ऐसे कहते हैं। जब इस रजोगुण में वृद्धि होती हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है, वह इंद्र तृप्ति चाहता है और इसके कारण सुंदर संतान, स्त्री, बच्चे और उनके लिए संपत्ति, दूसरे शब्दों में पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम थयो रथो हृदय ग्रंथि माहु हो अतः ग्रह क्षेत्र सुताप्त वितर जनस्य मोहयम महम मेति। उसके लिए मेहनत करता रहता है। तो पुंसा स्त्रिया मिथुनी भावम, स्त्री आकर्षण के कारण उनके हृदय में बहुत ज्यादा रहता है। तो श्रील प्रभुपाद अंत में कहते हैं कि ये पूरा आधुनिक समाज पूरा रजोगुणी समाज है। लोग या कर्म करना होता है, अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है। न्यूनाधिक
बहुत ही ज्यादा है। Therefore, the whole material world is more or less in mode of passion.
क्योंकि भौतिक जगत में सब क्या है, कर्म करते रहते। विशेष करके ये जो पृथ्वी को क्या कर रहा है, कहा गया कर्म भूमि कहा गया, सब जीव क्या है, कर्म करते हैं। उसको भोगने के लिए ऊंचे लोकों में जाते हैं या नीचे लोकों में जाते हैं, या ऊंचा योनि में जन्म लेते हैं या नीचे योनि में नीचे योनि में जन्म लेकर वो लोग क्या कर रहे हैं, तो उस कर्म को फल को भोगते हैं, है ना। स्वर्ग लोक में कर्म नहीं होता है, या नीचे योनि में कर्म का नहीं होता है, वो सिर्फ कर्म भोगते हैं। या दूसरे शब्दों में दो प्रकार के जीव है, जो कर्म बना रहे हैं और दूसरा कर्म भोग रहे हैं। मनुष्य कर्म बनाते हैं साथ साथ भोग भी, फल को भी, कुछ कुछ फलों को इस मनुष्य जीवन में भी लेना होता है, और नहीं तो कर्म करने के लिए कोई सुविधा नहीं होता है, है ना। शरीर चाहिए कर्म का जो फल है, है ना। और कुछ जीव क्या है, कर्म को फल को भोगते रहते हैं, सुख या दुख दोनों में, तो नीचे योनि में या ऊंचे लोकों में कर्म को भोग रहे हो ऐसे। तो ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक जगत में आप देखेंगे रजोगुण देखेंगे, क्योंकि रजोगुण नहीं है तो कोई सृष्टि नहीं होता, कोई कार्य नहीं होता, संपन्न नहीं होता। कुछ चीज़ को प्राप्त करने के लिए कुछ थोड़ा रजस भी चाहिए। तो रजोगुणी है, आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी एडवांस्ड इन द स्टैंडर्ड ऑफ मोड ऑफ पैशन, दिस इज नॉट प्रॉपर ट्रांसलेशन, राइट। आधुनिक सभ्यता में रजोगुण का मानदंड ऊंचा है। मॉडर्न सिविलाइजेशन इज कंसिडर्ड टू बी एडवांस्ड इन द स्टैंडर्ड ऑफ मोड ऑफ पैशन, तो है ना। हम लोग क्या कह रहे हैं, प्रगति, प्रगति का भी परिभाषा तीन गुणों में होता है। सत्वगुण में प्रगति मतलब वो क्या है, तो दार्शनिक चिंतन करना या तत्व ज्ञान के बारे में चिंतन करना या भगवान की ओर अग्रसर होना, वो सत्वगुण में प्रगति होता है। रजोगुण में क्या है, ये आधुनिक समाज में जो भी लेते हैं, बड़ा बड़ा इमारत बांधना, बड़ा बड़ा ऑटोमोबाइल बांधना, बड़ा बड़ा यू नो इंडस्ट्री बांधना, इधर उधर भागते रहना, उसको रजोगुण कहते हैं। तो रजोगुण का प्रगति है। और यहाँ पर बोल रहे वे प्राचीन काल में सतोगुण को उच्च अवस्था माना जाता था, यदि सतोगुणी लोग को मुक्ति नहीं मिल पाती तो रजोगुणी है उनके विषय में क्या कहा जाए। मतलब पिछले श्लोक में सतोगुण के व्यक्तियों को भी उनके बंधन के बारे में वर्णन किए, तो उनका भी मुक्ति नहीं होता है तो इस रजोगुण के वाले कैसे मुक्ति प्राप्त करें। तो श्लोक क्रमांक 8, तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्रापि तन्निबध्नाति भारत। हे भरत पुत्र, तुम जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहदारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, आलस्यता, नींद है, जो बद्ध जीव को बांधते हैं। प्रमाद, प्रमाद मतलब पागल। पागल का क्या क्या परिभाषा है, फिर पागल का अर्थ क्या होता है बताइए, वो भी जानना चाहिए हमें। पागल मतलब क्या है, वो नॉर्मल नहीं रहता है ना। ये एक स्वाभाविक स्थिति में नहीं रहता, कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहता है ना। तो प्रमाद, आलस, वो आलसी रहता है। नींद, प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे 6 घंटे से भी ज़्यादा सोते रहते हैं, या दूसरे शब्दों में जब भी समय मिलता है उनको सो जाते हैं। और उसमें आनंद आता है, शिल प्रभुपाद वो कहा करते थे, वो कहा करते थे कलकत्ता में वो लोग सरकारी नौकर लोग क्या करते थे, वो कुछ ऐसा लिफाफा वितरण करना या कुछ ऐसे पत्र वितरण करना, कुछ ना कुछ वितरण करने के लिए वो जाते थे ऑफिस से लेकर। आजकल ऐसे ईमेल में होता है ना सब कुछ, तो पहले ज़माने में उसको ये नौकर वो जाके करते थे, वो कुछ लिफाफा लेके कोई पार्क में जाके सो जाते थे। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, मुझे महीने में तनख्वाह मिलता है वो एक मेरा प्रॉफिट है, और उसके साथ साथ यहाँ पर बिना काम किए मैं सो रहा हूँ वो एक दूसरा प्रॉफिट है, ऐसा वो सोचते रहते हैं। ये तमोगुण का लक्षण है, ऐसा होता है। तो आनंद आता है काम नहीं करने का, काम करने का जरूरत नहीं है, और उसके साथ साथ सोने का, निद्रा निद्रा करने का। प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे तमस्तु, तू शब्द आता है, तू शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय है, इसका अर्थ है तमोगुण देहधारी जीव अत्यंत विचित्र गुण है। दिस मीन्स द मोड ऑफ इग्नोरेंस इज अ वेरी पेक्युलियर क्वालिफिकेशन ऑफ द एम्बॉडीड सोल। दिस ट्रांसलेशन डजंट गिव रियल टेस्ट, राइट और नॉट, है ना? इट्स अ पेक्युलियर क्वालिफिकेशन, वो रियली जैसे वो ज़्यादा विशेष गुण होता है जीव का। सो अभी परिभाषा देते हैं श्रील प्रभुपाद, नो ये तमोगुण का क्या क्या है। ये तमोगुण सत्वगुण का विरुद्ध तमोगुण होता है, एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ सत्वगुण इज तमोगुण। सत्वगुण में क्या होता है, इसके लिए हमें क्या समझना चाहिए, सत्वगुण क्या है। सत्वगुण में एक व्यक्ति क्या है, वो यथास्थिति चीजों को समझता है, ही अंडरस्टैंड थिंग्स एज दे आर, यथारूप में उनको समझता है सत्वगुण में। तो तमोगुण में क्या होता है, उसके विपरीत समझते हैं, सब कुछ उल्टा उनको समझ में आता है ना। तो वो तमोगुण का लक्षण है। यहाँ पर वो एक श्लोक उल्लेख कर रहे, वस्तु यथात्म ज्ञानावरकम विपर्ययः ज्ञान जनकम तमः। तो विपर्य मतलब एग्जैक्टली अपोजिट, पूरा उल्टा उनको समझ में आता है। सत्वगुण में जो व्यक्ति निष्कर्ष निकलता है उसके तद विरुद्ध उनका निष्कर्ष निकलता है। तो ये तमोगुण का लक्षण है, यह तमोगुण का अर्थ है। और प्रभुपाद बोलते हैं, हाँ तो यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे श्रील प्रभुपाद मृत्यु के, हाँ तो वो देख रहे हैं सबका मृत्यु हो रहा है, उनके पिताजी का मृत्यु हो गया, उनके बच्चे जन्म लेते उनका भी मृत्यु हो जाएगा, और बहुत सारे लोग मृत हो रहे हैं। मैन इज मॉर्टल, मनुष्य क्या है, मृत है। तो ये जानते हैं वो, फिर भी वो इतना मेहनत करते हैं, मेहनत बहुत ही जगत में है रहने के लिए, तो पागल की तरह मेहनत करते रहते हैं। तो उनको समझ में नहीं आता है कि मुझे भी मृत्यु हो जाएगा और मैं भी मर जाऊंगा। तो ये उसका लक्षण है, ऐसा बोलते हैं। तो फिर उसके बाद में वो उनके और लक्षण भी बताते हैं कि कैसे वो निद्रा आलस तमो प्रमाद में रहते हैं। तो श्लोक क्रमांक 9, नवे श्लोक में इन तीनों का क्या कर देते हैं, सार में वर्णन करते हैं। सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञानं मावृतं तु तमः प्रमादो प्रमादे संजयत्युता। हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक कर उसे पागलपन से बांधता है, ऐसे कह रहे। तो सतोगुणी पुरुष अपने कर्म या भौतिक वृत्ति से उसी तरह संतुष्ट रहता है जिस प्रकार दार्शनिक वैज्ञानिक या शिक्षक अपनी अपनी विद्याओं में निरत रहकर संतुष्ट रहते हैं। रजोगुणी व्यक्ति सकाम कर्म में लगा रहता है, वह यथासंभव धन प्राप्त करके उसे उत्तम कार्यों में व्यय करता है। कभी कभी वह अस्पताल खोलता है और धर्मार्थ संस्थाओं को दान देता है। तो वो सब वह नेम फेम यश नाम कमाने के लिए वो करते हैं। ये लक्षण है रजोगुणी व्यक्ति के। लेकिन तमोगुण तो ज्ञान को ढक लेता है, तमोगुण में रहकर मनुष्य जो भी करता है वह न तो उसके लिए न किसी अन्य के लिए हितकर होता है। हाँ अभी दसवें श्लोक में तमोगुण के तम सत्व रज तमोगुण के बीच में कैसे संघर्ष स्पर्धा होती रहती कंपटीशन, कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन आगे बढ़ेगा, कौन ऊपर उठेगा, उसके लिए ऐसे स्पर्धा रहता है। और ग्यारहवें और चौदहवें में इन व्यक्तियों का वास्तव में उनके लक्षण क्या है और विस्तार से भगवान बोलता है। तो श्लोक क्रमांक 10 रजस्तमो क्या है, रजस्तमशाभि भूय सत्वं भवति भारत रजसत्वं तमश्चैव तमसत्वं रजस्तथा। हे भरत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, तो कभी कभी रजोगुण सतोगुण तथा तमोगुण को परास्त कर देता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतो तथा रजोगुण के परास्त कर लेता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। तो पहला चीज है कि सभी लोग इस जगत में ये गुणों का, हालांकि एक व्यक्ति में सतोगुण ज्यादा हो 80% हो, लेकिन कुछ तो उनको रजतम का प्रभाव रहता है, थोड़ा तो रहता है ना? तो ऐसे मिश्रित रहते हैं। इसके कारण क्या हो जाता है, कभी कभी वो तीनों के बीच में स्पर्धा होती रहती है, तो है ना। और अलग अलग समय पर हम लोग अलग अलग गुणों के प्रभाव में रहते हैं, कभी हम लोग बहुत ही सुखी रहते हैं, कभी ज़्यादा क्रियाशील रहते हैं, कभी दुखी रहते हैं, निस्सहाय भावना का महसूस करते हैं हम लोग। तो हमें समझना चाहिए तब ये अलग अलग गुण क्या है वो प्रभाव। जब सुखी होते हैं तो तमोगुण का जो प्रभाव है वो ज़्यादा बढ़ गया है, जब हम लोग बहुत ही ज़्यादा क्रियाशील है उसका अर्थ है कि रजोगुण का प्रभाव बढ़ गया है। और हम लोग जब निस्सहाय अवस्था को अनुभव करते हैं तो वो तमोगुण का लक्षण है। तो ये गुण क्या है आप जानते हैं, ये गुण काल के समय में भी क्या करते हैं, कार्य करते हैं, काल के प्रभाव में कार्य करते हैं। प्रभुपाद जी भूमिका में, भगवद गीता के भूमिका में लिखते हैं, काल के अंतर्गत तीन गुण होते हैं और तीन गुण के प्रभाव में कर्म होते हैं, जैसे कहते हैं कर्म का परिभाषा देते हुए। तो इसके कारण काल जैसे बदलता है वैसे वैसे ये गुणों का भी प्रभाव अलग अलग हो जाता है। जब काल हम लोग हम देखते हैं सतयुग आ जाता है तो सतोगुण का प्रभाव बढ़ जाता है, वो रजतमोगुण को क्या कर देता है, पूरी तरह से हरा देता है। और जब त्रेता युग आ जाता है तो रजोगुण बढ़ जाता है, और जब सत्य द्वापर युग आ जाता है तो रज और तमोगुण का मिश्रण हो जाता है, और जब कलियुग आ जाता है तो क्या हो जाता है, सिर्फ तमोगुण रहता है, सब जगह अंधकार अंधकार अंधकार, अविद्या अविद्या अविद्या। तो ये सब तमोगुण के लक्षण हैं। तो अलग अलग समय और भागवत में एक जगह वर्णन आता है, जब सत्वगुण का प्राधान्य रहता है तो देवी देवताएं क्या करते हैं, वो बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और असुरों को हरा देते हैं। और जब तमोगुण रज या तमोगुण का प्रभाव ज़्यादा हो जाता है तो असुर लोग बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और देवताओं को हरा देते हैं। तो कभी कभी ऐसे होता है, हमने देखा भागवत में आप पढ़ेंगे तो वो बलि महाराज या रुद्रासुर कह रहे हैं असुरों को, हे दैत्यो अभी शांत रहो, क्योंकि अब उस सत्वगुण का अभी काल हमारे बलि महाराज कहते हैं अभी हमारे लिए योग्य नहीं है, ऐसे कहते हैं वो। तो लेकिन काल तो सीधा नहीं करते हैं काम, काल क्या है गुणों के द्वारा ये सब चीज चलाती है। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि कोई व्यक्ति रजतमोगुण को हरा कर सतोगुण में स्थित हो सकता है और वहाँ से शुद्ध सत्व को भी प्राप्त कर सकता है। और बीच में वो वर्णन करते हैं जैसे अन्न भी तीन प्रकार के होते हैं, और कभी कभी हम लोग बहुत खट्टा खाना चाहते हैं, कभी कभी हम लोग बहुत तीखा खाना चाहते हैं, कभी कभी क्या है हम लोग बहुत मीठा खाना चाहते हैं। तो उसका ये गुणों का प्रभाव है ना। तो चाहे तो एक व्यक्ति क्या कर सकता है, इनको लांग कर यद्यपि प्रकृति के तीन गुण होते हैं किंतु यदि कोई संकल्प कर ले तो उसे चतुर्गुण का आशीर्वाद मिल ही सकता है, और वह इसे लांग कर शुद्ध सत्वगुण में स्थित हो सकता है जिसे वासुदेव अवस्था कहते हैं, जिसमें वह ईश्वर की विज्ञान को समझ सकता है। विशिष्ट कार्यों को देखकर ही समझा जा सकता है कि कौन व्यक्ति किस गुण में स्थित है। तो ये जो लास्ट सेंटेंस है हम लोग महत्वपूर्ण है, कभी कभी सोचते हैं ना हम लोग वर्णाश्रम को कैसे स्थापित किया जाता है, उसके व्यक्ति के कार्यकलापों को देखकर हम लोग समझ सकते हैं। तो इन गुणों के जो अच्छी तरह से लक्षणों को समझना चाहिए, और विस्तार में इन गुणों का वर्णन 11वें स्कंद में किया गया है, और इससे भी विस्तार में वहाँ पर बहुत सारे लक्षणों के साथ आप जानना चाहते हैं तो वहाँ उसको भी पढ़ सकते हैं। इसमें आप कुछ है तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में एक और हमें शिक्षा देते हैं कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में प्रगति वास्तव में उन्नति करने की इच्छुक है उसे इन तीन गुणों को लांघना पड़ता है। वैसे सतोगुण को ही प्राप्त कर लेंगे तो बहुत ज्यादा हो गए, तो ठीक है वहां से हम लोग वो लांघ के जा सकते हैं। श्लोक क्रमांक 11, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्याविवृतं सत्यं। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जाता है जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। कौन कौन से द्वार है शरीर में बताइए, पहले हम लोग चर्चा करके हैं। नव द्वार पुरे देही, नव द्वार बताइए, कितने हो गए? और ठीक है इतना नव हो गए, नव द्वार कहते हैं। और यहाँ पर कह रहे हैं कि सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। क्या अर्थ होता है उन द्वारों में लाइट बताइए इसका क्या अर्थ है, कौन बताएंगे? तो इसका अर्थ है प्रकाश सभी द्वार वो जैसा करना चाहिए वैसे ही कार्य करते हैं, है ना। अभी किसको जो एस्पेक्ट है तो इसका अर्थ है कि वो सही में काम नहीं कर रहे, वो सतोगुण में नहीं है आपके, इसका अर्थ है। हाँ कोई सुबह मल त्यागता नहीं, इसका अर्थ है कि उसका पीछे का द्वार ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, वो सतोगुण में नहीं है। तो यथारूप यथास्थिति तो वो उसका अर्थ है। ठीक है, समझ में आ गए? ठीक है,
तो समझना चाहिए। सतोगुण में विकास हो चुके हैं,
सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखती है, सारी सही सही सुनाई पड़ती है और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद मिलता है। जब खाते हैं तो क्या होता है, उसका सही स्वाद मिलता है। कभी कभी आपने सुना होगा, अभी हम बताए ना ऐसे, वो क्या सड़ा हुआ है नहीं हुआ है, कुछ लोग बोलते मुझे समझ में आया था, तुम टेस्ट करो उसको। वो तमोगुण का लक्षण। उसके द्वार क्या है, ठीक तरह से नहीं कर रहा, सतोगुण में नहीं है। उसको सड़ा हुआ चीज भी अच्छा लगता है, वास्तव में उसको वर्णन करेंगे भगवान बाद में। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो ऊंचे गुण में है, जो नीचे गुण के संपर्क में आते हैं तो उनको इतना तकलीफ हो जाता है वो रह ही नहीं सकते। तो जब प्रभुपाद जी मायापुर में थे और सुबह वो अपने वॉक मॉर्निंग वॉक से वापस आए, वहाँ पर देखा उन्होंने कुछ गंदगी था, इतना चिल्लाया, तुम्हारे भक्ति सभी भक्ति क्या है, सहजिया है। अभी आप हमारे रूम मत देखे, आप लोग हमारा स्थिति ठीक नहीं। ठीक है, अभी हमारा रजोगुण है पूरी तरह से फुल स्विंग में है, छः घंटा पर वजन है ना। या श्लोक क्रमांक 12, लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्म नाम। आप ऐसे हम रुक जाएंगे। लोभ प्रवृत्तिर आरंभ कर्म नाम शमस्प्रह रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरत वंशियों में प्रमुख, जब रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन अध्ययन, क्या है, उद्यम तथा अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा की लक्षण प्रकट होते हैं, है ना। क्या क्या बोल रहे हैं, इनको आप यहां पर लिखना पड़ेगा, है ना, दूसरा रो में। तो ये सभी लक्षणों को ऐसे लिखना है, 10वें, 11वें, 12वें और 13वें श्लोक से। अत्यधिक आसक्ति,
बहुत ही ज्यादा आसक्ति रहता है, और सकाम कर्म करना, गहन उद्यम प्रवृत्ति आरंभ तथा अनियंत्रित इच्छा, तो अशाम अशाम उसको कहते हैं, अनियंत्रित इच्छा, तो ये सब इसके लक्षण है। रजोगुणी व्यक्ति कभी कभी पहले से ही प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता, वो अपना पद बढ़ाने के लिए लालायित रहता है ना।
आजकल लोग सभी लोग क्या है, प्रमोशन 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 के पीछे भागे लगे रहते हैं। अभी हम हाल ही में वो भक्त के घर में गए थे, उन्होंने बताया प्रभु जी कृष्ण भावनामृत में आने के बाद प्रमोशन का कोई चिंता नहीं है। तो पहले क्या है, सब लोग वो दफ्तर में उसी के बारे में चिंता करते रहते, वो संतुष्ट नहीं रहते अपनी स्थिति। तो प्रभुपाद यहाँ पर एक उदाहरण दे रहे हैं, कितना मेहनत करना पड़ता है ये मकान बड़े इमारत बनाने के लिए। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए बरसक प्रयत्न करता है, मानो यह उस महल में सदा रहेगा। वह इंद्र तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है, उसमें इंद्र तृप्ति की कोई सीमा नहीं होती। वह सदैव अपने परिवार के बीच अपने घर में रहकर इंद्र तृप्ति करते रहना चाहता है, इसका कोई अंत नहीं है। इन सारे लक्षण रजोगुणी की विशेषताएं मानी जाती है। तो उसके बाद अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे गुरु नंदन। तो ऐसा है वो, जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुश्रेष्ठ, हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्रकांड होता है। तो ये जहां प्रकाश नहीं होता वह ज्ञान अनुपस्थित रहता है। और विशेष करके नीचे लोक में क्या है, सूर्य प्रकाश नहीं जाता, इसलिए वहां पर उन लोगों को तमोगुणी लोक होते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश मतलब ज्ञान भी है, ज्ञान। तो ज्ञान नहीं होता, वह ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुण व्यक्ति किसी नियम में बांध कर कार्य नहीं करता, नियम में बंध कर कार्य नहीं करता, वह कारण ही अपने सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। लक्षण रहते चेतना का लेकिन निष्क्रिय, वो जैसा रहता है कि वो जीवन अपि मृतो हिस्सा, हालांकि जीवित रहता है मृत के समान ही वो दिखता है। तो ये तमोगुण का लक्षण है। तो और उसके बाद में यहाँ पर इसके बाद क्या है विभाग, 14 से लेकर जब मृत्यु के पार, इन तीन गुण में मृत्यु के बाद क्या गति होता है उसको 14वां, 15वां और 17वें 16वें श्लोक में। यदा सत्वं प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहव्रत तदुत्तमं विधां लोकान्। जब कोई सत्वगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो महर्षियों के विशेष करके जनलोक और प्रभुपाद जी कह रहे हैं जनलोक और ब्रह्मलोक में उनका जन्म होता है, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर और प्रभुपाद अमलान शब्द को अर्थ बता रहे हैं, रजो तथा तमोगुण से मुक्त। तो विशेष करके इसके लिए हम लोग चर्चा कर रहे थे कि इस जगत में मिश्रित रहते हैं थोड़ा तो, लेकिन ये एक्सट्रीम सत्वगुण का यहाँ पर वर्णन हो रहा है। बहुत ही तीव्र जो सत्वगुण होता है वैसे लोग इस लोक में जन्म लेते हैं, तो ब्रह्मलोक या जनलोक में जन्म लेते हैं। तो असीम असीम सत्वगुण भौतिक जगत में शुद्ध अशुद्धियाँ है लेकिन सत्वगुण सर्वाधिक शुद्ध रूप है। विभिन्न जीवों के लिए विभिन्न प्रकार के लोक हैं। जो लोग सत्वगुण में मरते हैं वे उन लोकों में जाते हैं जहाँ महर्षियाँ तथा महान भक्तगण रहते हैं। रजसी प्रलयं धत्वा कर्म संगेश ते मूढ़योनिषु जायते। तो इसमें वो खत्म कर देते हैं दोनों को, सत्व रजोगुण और तमोगुण में जो व्यक्ति मरते हैं उनका क्या गति होता है उसका वर्णन कर रहे हैं। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वो पशु योनि में जन्म धारण करता है। तो सकाम कर्मियों में मतलब मनुष्यों में, मनुष्य लोग कर्म करते रहते हैं, है ना, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कर्म, कर्म भूमि है ये बहुत ही जगह, विशेष करके पृथ्वी पर वो लोग यहाँ पर जन्म लेते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करने आत्मा कभी नीचे ही नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर इनवर्स एवोल्यूशन या डेवोल्यूशन, डेवोल्यूशन जैसे है ना, तो डार्विन के अनुसार क्या है, जीव का जो ऐसे ही बढ़ते जाता ऊपर 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 करके। लेकिन अभी तक मनुष्य के बाद क्या होगा उसका तो वर्णन किया नहीं किया होगा, लेकिन उनके अनुयायी तो लेकिन यहाँ पर कैसे मनुष्य के बाद, ये मनुष्य जीवन क्या है, एक जंक्शन है। आप ऊपर भी जा सकते हो और नीचे भी जा सकते हो, नीचे भी गिर सकते हो और ऊपर आपके ऊपर है ना। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता, यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है, वहाँ से मनुष्य को विकास प्रक्रम पुनः द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित है उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छा संगति में रहकर गुणों के लाकर कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना चाहिए, यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। अन्यथा उसकी कोई गारंटी नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त होता है। जरूरी नहीं कि सबको फिर से मनुष्य योनि का ही जन्म मिले। तो अभी तो फल के बारे में बताते हैं, क्या फल मिलते हैं तीनों गुण में कार्य करने से। तो श्लोक क्रमांक 16, कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलं रजस्तो फलं तुक्तं अज्ञानं तमसफलं। पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होता है। कभी आप लोग ऐसा कर दिए, क्या है, कुछ प्लानिंग नहीं किया ट्रैवलिंग करने के लिए, हाँ यहाँ से कहीं बम्बई जा रहे हो ऐसे, तो ऐसे ट्रेन में चढ़ गए तो क्या हो जाता है, दुख हो जाता है बस। तो रजोगुण का कार्य है ना, दुख हो जाता है। तमोगुण में क्या हो जाता है, मूर्खता प्रतिफलित हो जाता है। श्लोक तो श्रील प्रभुपाद इसको विस्तार में कर रहे हैं, रजोगुण में तमोगुण में कार्य क्या क्या होते हैं। तो हम पहले चर्चा कर रहे थे ना कि फिर से हम लोग एक बार चर्चा कर रहे थे वो भौतिक सुख क्या होता है, वो मिथ्या कैसे होता है, वो चर्चा कर रहे थे। उसमें एक कारण क्या बताया हमने, भौतिक सुख मिथ्या है, इसके लिए एक कारण हमने बताया, भौतिक जगत में लोग बहुत ज़्यादा कर्म करने में आनंद लेते हैं, कर्म करना ही आनंद सोचते हैं, या मेहनत ज़्यादा मेहनत करना ही आनंद सुख सोचते हैं। तो ऐसे जो है वो दुख का कारण बन जाता है। तो पहले उसके लिए फिर से प्रॉपर वो बड़ा इमारत बांधने के बारे में उदाहरण होता है। सत्व गुण में किए हुए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतः वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त है सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं, भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ यदि कोई गगनचुंबी प्रासाद बनवाना चाहता है तो उसे बनाने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। तो बड़े बड़े शहरों में लोग रहते हैं, वो बहुत ही मेहनत करते हैं, दिन भर मेहनत करते करते रहते हैं। उनका लक्ष्य क्या होता है, ये बड़े शहर में एक हमारा अपार्टमेंट हो, ऐसे वो सोचते रहते हैं। तो मेहनत करके 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 क्या कर देते हैं, जब समय आ जाता है वो अपार्टमेंट में शांति से रहने के लिए, तब तक उनका मृत्यु का समय आ जाता है। तो ये दुख का कारण है, ये रजोगुण का कारण।
तो उसे बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रासाद बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट होते होते ही है। अतः भगवद्गीता के कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर भी जो कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया है या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है। हम लोग कैसे मिथ्या सुख का वर्णन कर रहे थे, ये वास्तविक सुख नहीं है। और जहाँ तक समगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में भी पशु जीवन में जाना होता है। करते समय भी उसको वो दुखदायी होते हैं और बाद में भी उसको पुण्य। उदाहरण तौर पर एक क्या है, कत्ल करने में कोई कार्य करता रहता है, वो दुखमय है, वो स्थिति है ना, ऐसी स्थिति में कार्य करना, और उसके बाद में भी क्या होता है, उसको ऐसे बहुत ही नरक में सड़ना पड़ता है। या पशु जीवन में सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशभूत होकर वे इसे नहीं समझ पाते। जो कत्लखाने में जो काम करते हैं वो समझ नहीं पाते कि वो बहुत ही दुखदायक है वो काम करना, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। तो यहाँ पर विशेष करके प्रॉपर जी मीट ईटिंग, पशुओं का वध करना, मांस भक्षण करना, उसके बारे में वो तमोगुण का लक्षण है। पशु अधिक यह नहीं जानते हैं कि भविष्य में उन इस पशु को ऐसे शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर के संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मार जाना सही नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है। यहाँ पर आगे जाके प्रभुपाद जी बोलते हैं कि कैसे गो हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। मनुष्य को पशुओं की वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने उनकी अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी है। यदि किसी कारण से मांसाहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। तो भौतिक जगत में सभी जो दुख आते हैं वो पाप करने से आते हैं। पाप किससे होता है, वो अज्ञान और अंधकार से होता है, तमोगुण के कारण। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोबर सर्वाधिक अधीम अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। तो श्रील प्रभुपाद एक बार वो न्यू वृंदावन में बोलते एक खत में उन्होंने लिखा, कितने ब्राह्मण अपने जीवन त्याग दिए गायों को बचाने के लिए बोलते हैं। इसका अर्थ नहीं हम लोग जो जैन लोग करते हैं वैसे गायों का रक्षा करना। हम लोग प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण भावनामृत को प्रचार करते हैं, और जब भी हमारे पास गाय रहते हैं तो उनको बहुत ही अच्छी तरह से हमें रक्षा करना चाहिए। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद गोभी प्रीणित मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़ा अज्ञान में रहता है। है ना, यहाँ पर सब उल्लेख है ना। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है, नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगदीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी है और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी है। तात्पर्य यह है कि
इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक है और गाय महत्वपूर्ण भोजन की, अतः इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता का वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहन किया जाता है। इसे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्सना के पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्म में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती है वो निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरल विधि प्रदान करे। प्रभुपाद जी उपदेश दे रहे थे सभी राष्ट्रों को तो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना चाहिए, तो ऐसे कह रहे। और प्रभुपाद बोल रहे अत्यंत घातक युग है ना, घोर अज्ञान तमोगुण का या रजोगुण का अंधकार है। तो श्लोक क्रमांक 17, सत्वात् संजायते ज्ञानं रजसो लोभे च प्रमादानो तमसो भवतो ज्ञानं। सतोगुण में वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। तो भगवान बहुत सारा चीज दोहरा रहे ताकि हम लोग अच्छी तरह से इसको समझ रहे। तो प्रभुपाद जी और बताते हैं इस आधुनिक समाज के बारे में, वर्तमान युग के बारे में और बता रहे। चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतः उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होता है। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। तो ये पहले भी इसका वर्णन हुआ था। उदाहरणार्थ तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते हैं कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा अगले जन्म में मारे जाएंगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे उत्तरदायी अनुत्तरदायी बन जाते हैं। इस उच्च उच्चकलता को रोकने के लिए जनता सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे, तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता को कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है तो और सतोगुण बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएंगे। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग उनके लालसा के लिए सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन इंद्र तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है न मन शांति। हम लोगों को पहले कई सारे लोगों को हम लोग देखते हैं, इतना सारा धन होता है फिर भी दिन रात मेहनत करते रहते हैं, है ना। हमने एक जगह पर देखा था, बहुत ही करोड़पति है लेकिन रात को भी काम करते हैं, दिन में भी काम करते हैं, काम रात को भी काम करते हैं। तो वास्तव में स्थिति क्या है, लोगों में मन शांति नहीं है। सत्वगुण के अभाव के कारण लोग ऐसे करते रहते हैं। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो मानसिक रूप से अप्रसन्न नहीं रहता अपितु तो अपितु उसकी वृत्ति तथा उसके व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं।
उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनाने पड़ते हैं,
है ना। पहले वो बहुत अमीर बनने के लिए मेहनत कर रहा है, अमीर बनने के बाद क्या हो जाता है, उसको बना के रखने के लिए उसको मेहनत करना पड़ता है, प्रतिष्ठा बना के रखने के लिए। ये सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल हो जाते हैं, अपनी परिस्थिति से ऊब कर के मध्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं और इस प्रकार वे अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनके भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा
तामसा।
सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोक के वो ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोक को जाते हैं। तो प्रभुपाद जी इसको उल्लेख करते थे कि कैसे वैज्ञानिक लोक ऊंचे लोक में नहीं जा सकते, क्योंकि जो सिर्फ सतोगुण में रहते हैं वही ऊंचे लोक में जाते हैं। तो रजोगुण में क्या है, बार बार यहीं पर जन्म लेते हैं, और जो तमोगुण में जो रहते हैं वो नीचे चले जाते हैं। तो फिर प्रभुपाद जी एक एक करके इस तात्पर्य में क्या क्या होता है इनके बारे में वो बोलते हैं। इस श्लोक में तीन गुणों के कर्मों का फल को स्पष्ट रूप से बताया जाए। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीव में जिस मात्रा में सत्वगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्गों को स्वर्ग लोकों को भेजा जाता है, है ना। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, डिग्री किस हद तक हम लोग सत्वगुण में होते हैं उस हद तक ऊपर 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 जाते हैं। हाँ, जैसे इसलिए बता रहे थे ना कुछ दो तीन श्लोक के पहले, जब प्रभुपाद जी बोलते हैं ब्रह्म लोक या जनलोक में जन्म लेते वो असीम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम सत्वगुण है, सर्वोच्च सत्वगुण। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्म लोक है जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्म लोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है वो कहाँ पर देख चुके हैं हम लोग, सहस्र युग पर्यंतम आर्य ब्राह्मण विदु, और उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सत्वगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहाँ तक पहुँचा सकती है। रजोगुण मिश्रित होता है या सत्वगुण तमोगुण से मध्य में होता है, या सत्व तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है, लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो तथा तमोगुण लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं मशीन के द्वारा रजो तमोगुण के लोग मशीन के द्वारा ऊंचे लोकों में नहीं जा सकते हैं। सो मैकेनिकल अरेंजमेंट। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित जगन्य कहा गया है। अज्ञान विकसित करने के परिणाम अत्यंत भयावह होता है। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों पशुओं सरीसृपों वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती है। यहाँ पर तमसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उसका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर नहीं उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है, लेकिन जो इस सुअवसर को लाभ नहीं उठाता वो निम्नतर गुणों में बने रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पर वो लंबा यहाँ से लेकर श्लोक ये कैसे उस व्यक्ति का लक्षणों को वर्णन करते हैं कि जो इन गुणों के पार कर चुके हैं, गुणों को पार कर चुके हैं। पहले दो श्लोकों में वो संक्षेप में वर्णन करते हैं उन गुणों का लक्षण, मतलब ये 19 और 20 में। फिर 21वां श्लोक में अर्जुन उनके बारे में और विस्तार करने के लिए या वो तीन वही तीन प्रश्न को पूछते हैं कि उनका लक्षण क्या है, कैसे उनको लांग करके जा सकते हैं, लांग करने के बाद उनका क्या स्थिति होता है। तो इनको ऐसे 21वां श्लोक में वो तीन प्रश्न पूछते हैं, उसके उत्तर में और भगवान 6 श्लोक में वो वर्णन करते हैं। नान्यं गुणेभ्य कर्तारं यदा दृष्टानु पश्यति गुणेभ्यश्च परं व्यक्ति मद्वा वंशोधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। तो नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदि दृष्टानुपश्यति, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम, मैं नहीं करता हूँ ये गुण ही, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश। और पिछले श्लोक अध्याय में भी आया था ना, पिछले अध्याय में क्या आया था, प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वश यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति, ऐसे 30वें श्लोक में, पिछले अध्याय के 30वें श्लोक में ऐसे वर्णन आता है। तो वो पहला चीज, और दूसरा चीज भगवान इन गुणों के परे है वो समझना चाहिए, तो तब जाके क्या हो जाता है, मद्भावम सोधिगच्छति, भगवान के दिव्य स्वभाव को वो प्राप्त कर लेते हैं। तो ये दो क्या है, कंडीशंस, नियम है। समुचित महापुरुष से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांग सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण के कृष्ण है, वास्तविक गुरु कृष्ण है, और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण बाणाभावित है, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कारण से इस ज्ञान को सीखना होता है। पूर्णतः कृष्ण भावना भावित है वही व्यक्ति से इनको सीखना होता है। आप लोगों का दुर्भाग्य, अन्यथा मनुष्य को जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, विशेष करके इस तात्पर्य में, इस तात्पर्य में 4 या 5 बार ऐसे गुरु के बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं, बार बार गुरु, गुरु से सीखना है, गुरु से सीखना है, गुरु से सीखना है, ऐसे बार बार श्रील प्रभुपाद बोलते हैं। ये गुणों के जो ज्ञान है, तीन गुण का जो ज्ञान है, उसको गुरु के माध्यम से सीखना जाता है, तभी उसका लाभ प्राप्त होता है। तो पहले अभी बोल चुके हैं, अभी दूसरी बार, प्रमाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियां और प्रकृति के गुणों के अपनी बद्ध अवस्था होने के बारे में जान सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं है, होता है, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है। जिस समझ में आ गया कि जीव एक्चुअली वो कोई कर्म को करता नहीं है, तो जीव क्या है, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वो गुणों के प्रभाव में होने के कारण उसको बाध्य होकर कर्म करता है। जब तक मनुष्य किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलते, फिर से बोल रहे आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक गुरु, तब तक वह नहीं समझ सकता है कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की या चौथी बार ना संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और इसे समझ लेने पर वह पूर्णतः पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना वाली व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता,
सातवें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। कौन सा है वो श्लोक? दैवी एष गुणमयी मम माया दुरते मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतम। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप देख सकता है उस पर प्रकृति की प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। तो और श्लोक क्रमांक 20, गुणानेतान दित्यत्रेण देहे देह समुद्भवम जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों को मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत को भोग कर सकता है। गुणानीतान अतित्यत्रेण देही देह समुद्भवम जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। तो दो उसका लाभ होता है, इस जीवन में भी वो अमृतत्व का अनुभव करेगा और अगले जीवन में जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाए, फिर से इस जगत में वापिस नहीं आएगा। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि कृष्ण बाणामृत में देह त्याग करने से क्या स्थिति होता है। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है कि देहदारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान के उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रवाह से मुक्त हो सकता है। वही इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। वो पिछले अध्याय में जैसे आकाश, जैसे वायु जो है वो कभी सूक्ष्म होने के कारण किसी में मिलती नहीं है, वैसे इस जगत में रहने के बाद भी ऐसे व्यक्ति वो मुक्त रहता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी तो ये व्यक्ति मुक्त रहता है लेकिन वह शरीर में इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भवपाश से मुक्ति का संकेत है। और अध्याय क्या है 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। कौन सा है 18 क्या है? जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति के प्रविष्ट होता है। अर्जुन, तो अर्जुन यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे आप। अर्जुन उवाच कैर्लिंग स्त्री गुणाने तानति तो भवति प्रभु किमाचर कथम चैतान त्रिगुणानति वर्तते। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने पूछा, हे भगवान जो इन तीन गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसे होता है और वह प्रकृति के गुणों की किस प्रकार लांघता है, उनके लक्षण क्या है, आचरण क्या है और कैसे प्रकार लांघता है। तो रूपा जी कहते हैं इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहते हैं जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई किसे कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है, क्या वे नियमित होते हैं क्या अनियमित। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछते हैं जिससे वह दिव्य स्वभाव प्राप्त कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न नहीं होता। तीनों में से कौन सा प्रश्न महत्वपूर्ण है? वो तीसरा, कि कैसे हम लोग लांघ सकते हैं इन तीनों को,
जब तक वो साधन नहीं है तो वो लक्षण दिखाना मुश्किल है, लक्षण प्रकट होना मुश्किल है। तो उसका उत्तर दे रहे श्री भगवान उवाच प्रकाशकं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवृत्तानि उदासीनावदासीनो गुणैर्यो न विचालते गुणावर्तन्त इत्येवं यो वतिष्ठति लिङ्गते समदुःख स्वतः सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। सो भगवान ने कहा हे पांडुपुत्र जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थिति होने पर न तो उसने उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर ही केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपनी आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के डले पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा चतुर बुराई मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति प्रकृति के गुणों से अतीत करते हैं। तो जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछे थे उनको क्रमशः ही भगवान उत्तर दे रहे हैं। ओके तो और ये तीन ये सभी श्लोकों को हम लोग कल चर्चा करेंगे। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी
भक्ति में कुछ सेवा ऐसी होती है जिसमें ज्यादा क्रिया नहीं होती है, कुछ ऐसी होती है जिसमें बहुत भागना पड़ता है, तो सभी सेवा दिव्य है कि क्रियाओं के साथ ही सत्रों को रजोगुण हो, या क्रिया करने वाला जो भक्त है
या डेफिनेटली हम लोग अभी गुणों के प्रभाव में हैं हम लोग, लेकिन भक्ति भगवान का जो भक्ति है जब सही भावना से किए जाते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए वो दिव्य। ठीक है और दूसरा प्रश्न
कोई भी सेवा कर रहे हैं तो वो सेवा में जो भक्त कर रहा है
हो सकते है ना वैसे, इसलिए श्रीमद् भागवतम में 81 प्रकार के भक्ति का वर्णन करते हैं कपिल देव, तो वो गुणों के संबंध में ही किया। तो लेकिन यहाँ पर हमें बार बार है ना आदेश होता है, कम से कम हमें सतोगुण में अपने आप को स्थित करना चाहिए और वहाँ से दिव्य पद को प्राप्त करना चाहिए। ठीक है तो कैसे उनको समझना चाहिए, ये गुणों को इसको अच्छी तरह से समझना चाहिए तीनों गुणों को। इसके बाद में और भी थोड़ा अगले 17वें अध्याय में 18वें अध्याय में वर्णन आएगा, उसके आधार पर हम लोग समझ सकते हैं ये सब चीज। लेकिन फिर भी भगवान स्वीकार करते हैं। ठीक है और कुछ, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।